डैनियल की पुस्तक संख्या 78। चार घृणितकारियों का अनावरण, लाओदिकियाई एडवेंटिज्म में विद्रोह का ऐतिहासिक समानांतर।
अमोरियों का इतिहास उस समय को चित्रित करने के लिए उपयोग किया गया है जब परमेश्वर का क्रोध लाओदिकियाई एडवेंटिज्म के विरुद्ध उतारा जाता है। सिस्टर व्हाइट बताती हैं कि अंतिम दिनों में जब 144,000 पर मुहर लगाई जाती है, दंड देने का परमेश्वर का समय वही है जैसा तब था जब परमेश्वर ने अमोरियों पर अपना क्रोध उतारा था। वो कहती हैं, यद्यपि अमोरियों का राष्ट्र अपनी मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार के कारण कुख्यात था, फिर भी उसने अभी तक अपने अधर्म का प्याला नहीं भरा था। करुणामय सृष्टिकर्ता चौथी पीढ़ी तक उनके अधर्म को सहने को तैयार था। तब यदि कोई सुधार दिखाई न देता तो उसके दंड उन पर आ पड़ने थे। अचूकता के साथ अनंत परमेश्वर अब भी सब राष्ट्रों का लेखा रखता है। जब तक उसकी दया पश्चाताप के आह्वानों के साथ दी जाती रहती है, यह लेखा खुला रहेगा। पर जब आंकड़े उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जो परमेश्वर ने निश्चित की है, तब उसके क्रोध की कार्यवाही आरंभ होती है, लेखा बंद हो जाता है, दिव्य धीरज समाप्त हो जाता है। बहन व्हाइट स्पष्ट रूप से ये बताती हैं कि एचकेल के 144,000 पर मोहर लगाए जाने के चित्रण के संदर्भ में लाओदिकियाई एडवेंटवाद के विरुद्ध ईश्वर के क्रोध की कार्यवाही का आरंभ तब होता है जब उनके अधर्म का प्याला भर जाता है और वो प्याला चौथी पीढ़ी में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ये सारी जानकारी अध्याय 8 में आरंभ हुए उस दर्शन के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है जो चार क्रमशः बढ़ते हुए घृणित कर्मों का चित्रण करता है।
तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य पुत्र, अब अपनी आंखें उत्तर दिशा की ओर उठाओ। तो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाई और देखो, उत्तर की ओर वेदी के फाटक के प्रवेश पर ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली ये प्रतिमा थी। फिर उसने मुझसे कहा, मनुष्य पुत्र, क्या तू देखता है कि वे क्या कर रहे हैं, ये बड़ी घृणित बातें जो इसराइल का घराना यहाँ करता है, कि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। परंतु तू फिर मुड़कर देख, तू इससे भी बड़े घृणित काम देखेगा। और वो मुझे प्रांगण के द्वार पर ले आया और जब मैंने देखा तो दीवार में एक छेद था। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य पुत्र, अब दीवार में खोद। और जब मैंने दीवार में खोदा तो देखो, एक द्वार निकला। और उसने मुझसे कहा, भीतर जा और वे दुष्ट घृणित काम देख जो वे यहाँ करते हैं। सो मैं भीतर गया और देखा, और देखो, हर प्रकार के रेंगने वाले जंतु और घृणित पशु और इसराइल के घराने की सब मूर्तियाँ चारों ओर दीवार पर चित्रित थी। और उनके सामने इसराइल के घराने के 70 पुरुनिये खड़े थे और उनके बीच शाफान का पुत्र यासन्या खड़ा था। हर एक के हाथ में धूपदान था और धूप का घना बादल ऊपर उठ रहा था। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य पुत्र, क्या तूने देखा कि इसराइल के घराने के पुरुनिये अंधेरे में क्या करते हैं, हर एक अपने अपने चित्रगृहों में? क्योंकि वे कहते हैं, प्रभु हमें नहीं देखता, प्रभु ने पृथ्वी को त्याग दिया है। उसने मुझसे ये भी कहा, फिर मुड़कर देख, तू उनसे भी बड़े घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के द्वार पर ले आया जो उत्तर की ओर था, और देखो, वहां स्त्रियां बैठी थीं जो तमूज के लिए रो रही थीं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या तूने ये देखा? फिर तू मुड़कर देख और तू इनसे भी बड़े घृणित कर्म देखेगा। और वो मुझे प्रभु के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और देखो, प्रभु के मंदिर के द्वार पर मंडप और वेदी के बीच लगभग 25 पुरुष थे जिनकी पीठ प्रभु के मंदिर की ओर थी और उनके मुख पूरब की ओर, और वे पूरब की ओर सूर्य की आराधना कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या तूने ये देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए ये तुच्छ बात है कि वे यहाँ वे घृणित कर्म करते हैं जो वे करते हैं? क्योंकि उन्होंने देश को हिंसा से भर दिया है और वे फिर मुझे क्रोध दिलाने लगे हैं, और देखो, वे अपनी नाक पर टहनी लगाते हैं। इसलिए मैं भी क्रोध में व्यवहार करूंगा, मेरी आंख ना तो बख्शेगी न मैं दया करूंगा। और चाहे वे ऊंची आवाज में मेरे कानों में पुकारें तो भी मैं उन्हें नहीं सुनूंगा। यहेजकेल 8:5-18।
जब यहेजकेल को पहली घूंसे दित बात
अर्थात वेदी के फाटक के प्रवेश पर ईशा की प्रतिमा की स्थापना दिखाई गई। तब उसे बताया गया कि उसे ईशा की उस प्रतिमा से भी बड़ी घुसड़ित बातें दिखाई जाएंगी। दूसरी घुसड़ित बात गुप्त कोठरियों द्वारा दर्शाई गई है, जहां नेतृत्व, जिसे प्राचीन पुरुषों के रूप में चित्रित किया गया है, धूप के द्वारा प्रतीकित प्रार्थना चढ़ा रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु ने पृथ्वी को त्याग दिया है और वो उन्हें देखता नहीं। परंतु यहेज़केल को बताया गया कि वो इनसे भी बड़ी घुसड़ित बातें देखेगा। तीसरी घुसड़ित बात तम्मूज के लिए रोती हुई स्त्रियों से दर्शाई गई है, परंतु उससे भी बड़ी घृणित बात है, क्योंकि चौथी घृणित बात ये दर्शाती है कि 25 पुरुष नेता मंदिर की ओर अपनी पीठ किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। चौथी घृणित बात में ये घोषणा की जाती है कि वे वृद्ध पुरुष देश को हिंसा से भर चुके हैं और मुझे क्रोधित करने के लिए फिर लौट आए हैं, और देखो वे अपनी नाक के पास डाल रखते हैं। उत्तेजना का दिन वो दिन है जब परमेश्वर के क्रोध की कार्यवाही आरंभ होती है, जैसा कि प्राचीन इसराइल के साथ तब हुआ जब उन्होंने प्रतिज्ञात देश के विषय में यहोशू और कालेब के संदेश को अस्वीकार कर दिया। मुहर के संदेश का अस्वीकार यह दर्शाता है कि यरूशलेम के लिए अधर्म का प्याला भर चुका है। यहोशू और कालेब उस छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वे थोड़े से विश्वासी है जो कलीसिया और देश में होने वाली घृणित बातों के कारण आहें भरते और रोते हैं।
तब मूसा और हारून इसराइल की संतानों की मंडली की सारी सभा के सामने मुंह के बल गिर पड़े, और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो उस देश की टोल लेने वालों में थे, ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, और उन्होंने इसराइलियों की सारी मंडली से कहा, वो देश जिसके भीतर हम उसे टटोलने को गए थे अति उत्तम देश है। यदि प्रभु हमसे प्रसन्न हो तो वो हमें उस देश में ले जाएगा और उसे हमें देगा, वो देश जो दूध और मधु से बहता है। केवल तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह न करो और उस देश के लोगों से मत डरो, क्योंकि वे हमारे लिए रोटी हैं, उनकी रक्षा उनसे चली गई है और प्रभु हमारे साथ है, उनसे मत डरो। परंतु सारी मंडली ने उन्हें पत्थरों से मार डालने को कहा। तब प्रभु की महिमा मंडली के तंबू में समस्त इसराइलियों के सामने प्रकट हुई, और प्रभु ने मूसा से कहा, ये प्रजा मुझे कब तक उत्तेजित करती रहेगी? और मैंने उनके बीच जितने चिन्ह दिखाए हैं उनके होते हुए भी वे कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें महामारी से मारूंगा और उन्हें उत्तराधिकार से बेदखल कर दूंगा, और तुझसे उनसे बड़ी और अधिक शक्तिशाली जाति बनाऊंगा। गिनती 14:5-12।
गिनती और यहेज़केल पुस्तकों में विद्रोहियों द्वारा उत्पन्न की गई उत्तेजना का मूल कारण ये था कि उन्होंने प्रकट किए गए चिन्हों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मूसा के समय जिन चिन्हों को अस्वीकार किया गया था वे वही चिन्हों थे जो मिलराइटों के इतिहास में परमेश्वर की शक्ति के प्रकटन का प्रतिरूप थे। प्राचीन इसराइल ने अपनी आधारभूत इतिहास में उसकी शक्ति के प्रकटन के चिन्हों को अस्वीकार करके परमेश्वर को कुपित किया। 144,000 की मुहर लगने के समय आधुनिक इसराइल भी उसी आधारभूत इतिहास को अस्वीकार करता है, उसकी पीठ फेर लेता है जो चिन्हों होना था, ताकि वे अंतिम दिनों में दोहराई जाने वाली मध्यरात्रि की पुकार के इतिहास की पुनरावृत्ति को पहचान सके। परमेश्वर विद्रोहियों को अपनी शक्ति के प्रकट होने का दोहराव देखने देता है, क्योंकि अपनी शक्ति के प्रकट होने का यही दोहराव न केवल अंतिम वर्षा था बल्कि वही सत्य भी था जो उन्हें बचा लेता यदि वे सत्य से प्रेम करने वालों में होते। यहेज़केल के 8वें अध्याय की 4 घृणहते बातों की पहचान को लौदीकियाए एडवेंटिज्म की 4 पीढ़ियों के प्रतीक के रूप में समझना उस संदेश का भाग है जिसकी मुहर अंत के दिनों में यहूदा के गोत्र का सिंह खोलता है। पहली पीढ़ी 1863 के विद्रोह से शुरू हुई और 25 वर्ष बाद 1888 में वो विद्रोह आया जिसने गुप्त कक्षों के प्रतीक के साथ दूसरी पीढ़ी की शुरुआत को चिह्नित किया। 31 वर्ष बाद 1919 में W.W. प्रेस्कॉट की द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट नामक पुस्तक के प्रकाशन ने तीसरी पीढ़ी की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे यहेज़केल ने तम्मूज के लिए रोती हुई स्त्रियों के रूप में दर्शाया था। उसके 38 वर्ष बाद 1957 में क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन नामक पुस्तक के प्रकाशन के साथ चौथी पीढ़ी आ गई, ये उस समय को चिन्हित करती है जब विद्रोही पूर्व से उठने वाले मुहर लगाने वाले संदेश के विरुद्ध हो जाएंगे और सूर्य की उपासना करेंगे। हम 1888 में मिनियापोलिस जनरल कॉन्फ्रेंस में सामने आई लाओदिकिये एडवेंटिज्म के विद्रोह की दूसरी पीढ़ी पर विचार करना आरंभ करेंगे। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यहेजकेल के चारों घुणित कर्म यरूशलेम में ही घटित होते हैं। यद्यपि वे विद्रोह के क्रमिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी वे हमेशा उसी विद्रोह को संबोधित करते हैं जो उस नगर के भीतर घटित होता है, जो अंतिम दिनों में लाओदिकिये एडवेंटिज्म का प्रतिनिधित्व करता है।
यरूशलेम के विनाश के एक चिन्ह के रूप में मसीह ने कहा था, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे और बहुतों को धोखा देंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता सचमुच उठे, उन्होंने लोगों को धोखा दिया और बहुतों को मरुभूमि में ले गए। जादूगर और तांत्रिक चमत्कारी सामर्थ्य का दावा करते हुए लोगों को अपने पीछे पीछे पर्वतों के निर्जन स्थलों में खींच ले गए। परंतु ये भविष्यवाणी अंतिम दिनों के लिए भी कही गई थी। ये चिन्ह दूसरे आगमन का संकेत है। आज भी झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उसके चेलों को बहकाने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। क्या हम ये पुकार नहीं सुनते, देखो वो मरुभूमि में है? क्या हजारों लोग मसीह को पाने की आशा में मरुभूमि की ओर नहीं निकल पड़े? और उन हजारों सभाओं से जहां लोग दिवंगत आत्माओं से संगति रखने का दावा करते हैं, क्या अब ये पुकार नहीं सुनाई देती, देखो वो गुप्त कक्षों में है? यही तो वो दावा है जो आत्मावाद प्रस्तुत करता है। परंतु मसीह क्या कहते हैं, इस पर विश्वास न करो, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। युगों की अभिलाषा 738-10 चौथे दशकी।
गुप्त कक्ष आत्मवाद का प्रतीक है और यही स्केल के अध्याय 8 की दूसरी गृहित बात मंदिर के भीतर घटित होती है, जहां दीवारों पर सांसारिक चित्र गुप्त रूप से टांगे गए थे।
तब मैं भीतर गया और देखा, और देखो हर प्रकार के रेंगने वाले जंतु और घृणित पशु और इज़राइल के घराने की सब मूर्तें चारों ओर दीवारों पर चित्रित थीं, और उनके सामने इज़राइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष खड़े थे और उनके बीच शाफान का पुत्र याजन्याह खड़ा था। प्रत्येक के हाथ में अपना धूपदान था और धूप का घना धुआं ऊपर उठ रहा था। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अंधेरे में क्या करते हैं, हर एक अपने चित्रों के कक्षों में? क्योंकि वे कहते हैं, प्रभु हमें नहीं देखता, प्रभु ने पृथ्वी को छोड़ दिया है। यहेजकेल 8:12।
ये जैकल पवित्र स्थान की दीवारों पर चित्रित इज़राइल के घराने की मूर्तियां देखता है, परंतु उसे स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि ये विद्रोह प्रत्येक बजुर्ग पुरुष की कल्पनाओं के कक्ष के भीतर भी घट रहा है। वास्तविक मंदिर के भीतर का विद्रोह मानव के मंदिर के भीतर के विद्रोह को चिन्हित करता है।
जब यीशु ने मंदिर को संसार के खरीदारों और विक्रेताओं से शुद्ध किया, तब उन्होंने यह घोषित किया कि उनका उद्देश्य हृदय को पाप की अशुद्धि से, सांसारिक इच्छाओं, स्वार्थी वासनाओं और बुरी आदतों से जो आत्मा को भ्रष्ट करती हैं, शुद्ध करना है। मलाकी 3:1-3 उद्धृत, द डिजायर ऑफ एजेस 16-।
दूसरी गिनोनी बात कलीसिया के भीतर और कलीसिया की रक्षा के लिए नियुक्त प्राचीनों के मनों दोनों में दुष्टता के प्रकट होने का संकेत थी। वहां जो दुष्टता प्रकट हुई वो आत्मवाद की दुष्टता है। नूह के दिनों में जब मनुष्यों के हृदय की हर कल्पना दुष्ट थी, तब प्रलय पूर्वी लोगों ने अपने अधर्म का प्याला भर दिया था।
और परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई थी और उसके हृदय के विचारों की हर कल्पना निरंतर केवल बुराई ही थी। उत्पत्ति 6:5।
दूसरी पीढ़ी ये दिखाती है कि आत्मवाद कब यरूशलेम के नेताओं में और साथ ही लाओदिकियाई एडवेंटिज्म की कॉरपोरेट संरचना में प्रवेश कर गया। इज़राइल के घराने के नेताओं में जो अंधेरे में अपनी चित्रों के वाच में किया, वो ये दर्शाता है कि उनके हृदयों के विचारों की हर कल्पना केवल बुरी थी। सिस्टर व्हाइट स्पष्ट करती हैं कि यरूशलेम का विनाश संसार के अंत का प्रतिनिधित्व करता है और नूह के युग में आए जल प्रलय की गवाही भी संसार के अंत का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम दिनों में जो लोग सत्य से पवित्र किए जाने से इनकार करते हैं उन पर आत्मवाद हावी हो जाता है, जैसा कि यहेजकेल अध्याय 8 की दूसरी घृणित बात द्वारा दर्शाया गया है। यहेजकेल की दूसरी हृदयता 1888 में आई बगावत का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी पीढ़ी का प्रतीक बन जाती है, पर इससे भी बढ़कर 1888 और वो सब जो वो दर्शाता है या जिसके द्वारा वो दर्शाया जाता है 11 सितंबर 2001 को दोहराया गया। बहन वाइट विशेष रूप से बताती है कि 1888 में प्रकाशित वाक्य 18 का शक्तिशाली स्वर्गदूत उतरा और इसलिए वो इतिहास उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब न्यूयॉर्क शहर की महान इमारतों को परमेश्वर के एक स्पर्श से गिरा दिया जाना था और प्रकाशित वाक्य 18 के पद 1 से 3 तक पूरे होने थे।
पूर्व धारणाओं को त्यागने और इस सत्य को स्वीकार करने की अनिच्छा मिनियापोलिस में भाइयों वैगनर और जोन्स के माध्यम से आए प्रभु के संदेश के विरुद्ध प्रकट हुए विरोध के बड़े हिस्से की जड़ में थी। उस विरोध को भड़काकर शैतान ने हमारे लोगों से बहुत हद तक पवित्र आत्मा की उस विशेष शक्ति को दूर रखने में सफलता पाई जिसे परमेश्वर उन्हें प्रदान करने के लिए लालायित था। शत्रु ने उन्हें उस दक्षता को प्राप्त करने से रोका जो सत्य को संसार तक पहुंचाने में उनकी हो सकती थी, जैसा कि प्रेरितों ने पेंतेकोस के दिन के बाद उसे घोषित किया था। वो प्रकाश जो अपनी महिमा से समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला है उसका विरोध किया गया और हमारे ही भाइयों की कार्रवाई से वो बहुत अंश तक संसार से दूर रखा गया है। चुने हुए संदेश पुस्तक 1 513 पाइश
1888 का इतिहास उस पश्चात वर्षा के संदेश के अस्वीकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो 11 सितंबर 2001 को आया। 1888 लाओदीकियाई एडवेंटवाद की दूसरी पीढ़ी का प्रतीक है जिसका प्रतिनिधित्व यहेजकेल की दूसरी घृणित बात करती है और उसी इतिहास में उस विद्रोह की पहचान की गई है जिसका प्रतिरूप यहेजकेल में 70 प्राचीन थे। उनका विद्रोह आत्मवाद का प्रतिनिधित्व करता था और नूह के समय अनुग्रह काल का प्याला भर जाने के समानांतर था। संदेश के अस्वीकार ने नेतृत्व द्वारा पश्चात वर्षा के संदेश के अस्वीकार को दर्शाया जो इस्लाम के तीसरे हाय के आगमन की पहचान कराने वाला था।
पिछली वर्षा परमेश्वर की प्रजा पर बरसने वाली है। एक सामर्थी स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरना है और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो जानी है। रिव्यू एंड हेरल्ड April 25, 1891।
1885 में जिसने संदेश को अस्वीकार किया वो नेतृत्व 11 सितंबर 2001 को इस्लाम के संदेश के अस्वीकार का प्रतिरूप था, परंतु परमेश्वर का इरादा है कि वो ऐसी शक्ति का प्रगटीकरण करे जिसे वे नेता उन पर अपने न्याय के एक भाग के रूप में देखेंगे। पर वर्षा की शक्ति का प्रगटीकरण मुहरबंदी की अवधि के अंत में होता है। ये 11 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुआ, परंतु अपना चरमोत्कर्ष ये प्रकाशित वाक्य 11 के 3.5 दिनों के अंत में पहुंचता है जब महान भूकंप आता है। 8088 का संदेश लाओदीप किया ये संदेश था। पूर्व में चूत नी हुई प्रजा के लिए अंतिम पुकार जो तब एक ओर की जा रही थी।
A.T. जोन्स और E.J. वैगनर द्वारा हमें दिया गया संदेश लाओदीकिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेश है और हाय हर उस व्यक्ति पर जो सत्य को मानने का दावा करता है फिर भी दूसरों की ओर परमेश्वर प्रदत्त किरणों का परावर्तन नहीं करता। The 1888 Materials 1053।
21 से 21 के संदेश उस संदेश का प्रतिनिधित्व करता था जिसने ये स्पष्ट किया कि जब 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क शहर की विशाल इमारतें गिरा दी गईं, तब लाओदीकिया की कलीसिया को सीधी गवाही दी जानी थी और ये सीधी गवाही तीसरी हाय के अंतर्गत इस्लाम का संदेश है जो जब धर्म से पीछे हटे हुए लोगों पर फूंका जाता है तो उन्हें एक शक्तिशाली सेना के रूप में जीवित कर देने की शक्ति रखता है।
सोए हुए लोगों को जागृत करने के लिए हमारे चर्चों और संस्थानों को एक सीधी गवाही दी जानी चाहिए। जब प्रभु के वचन पर विश्वास किया जाता है और उसका पालन किया जाता है तब निरंतर प्रगति होगी। आइए अब अपनी बड़ी आवश्यकता देखें। जब तक वो सूखी हड्डियों में प्राण नहीं फूंकता प्रभु हमें उपयोग में नहीं ले सकता। मैंने ये शब्द सुने, हृदय पर परमेश्वर की आत्मा की गहरी चालना के बिना, उसके जीवनदायी प्रभाव के बिना सत्य एक मृत अक्षर बन जाता है। रिव्यू एंड हेराल्ड 18 नवंबर 1902।
1885 एडवेंटिस्ट आंदोलन की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत को चिन्हित करते थे, लेकिन ये एक ऐसी भविष्य सूचक रेखा भी प्रस्तुत करता है जो अंतिम दिनों के साथ मेल खाती है। 11 सितंबर 2001 को परमेश्वर ने उन लोगों का, जिन्होंने ये स्वीकार करने का चुनाव किया कि पृथ्वी के पशु पर इस्लाम का आक्रमण भविष्यवाणी की पूर्ति था, प्राचीन मार्गों की ओर मार्गदर्शन किया। परमेश्वर के लोगों को विलियम मिलर के रत्नों की ओर लौटना और उन आधारभूत सत्यों में शिक्षित होना आवश्यक था, जिनमें पहली और दूसरी विपत्ति की पूर्ति शामिल थी, जिसने बदले में उस समय तीसरी विपत्ति के आगमन को स्थापित किया। जब वे लोग उन प्राचीन मार्गों पर लौट आए तो उन्होंने हबक्कूक की दो पट्टिकाओं की पवित्रता को पहचाना। आठी सरक तक हबक्कूक की दो पट्टिकाओं के विरुद्ध हुआ विद्रोह, जो मिलर के रत्न है और साथ ही एडवेंटिज्म की नींव भी, उस विद्रोह का प्रतीक था जो 11 सितंबर 2001 को दोहराया गया, क्योंकि एक बार फिर लाओदिकियन एडवेंटिज्म के नेतृत्व को मिलर के रत्नों का समर्थन करने या उन्हें अस्वीकार करने का अवसर दिया गया। एडवेंटिज्म की वे चारों पीढ़ियां जो यहेज़केल अध्याय 8 में दर्शाई गई हैं, 11 सितंबर 2001 को लाओदिकियन एडवेंटिज्म के विद्रोह का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। अगले लेख में हम लोकारण और इसी क्रिश्चियनिज्म की दूसरी पीढ़ी की पहचान करना जारी रखेंगे।
परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसी भावनाएं देकर रचा जो शाश्वत वास्तविकताओं को अपनाने में सक्षम हों। इन भावनाओं को शुद्ध और पवित्र रखना था, हर प्रकार की सांसारिकता से मुक्त। लेकिन मनुष्यों की सोच विचार से अनंतता ओझल हो गई है। परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत, जो हर आत्मा की नियति अपने हाथों में रखता है, भुला दिया गया है। अपने आप को ज्ञान में बलवान समझते हुए मनुष्यों ने परमेश्वर की दृष्टि में अपने को सबसे निम्न स्तर तक गिरा लिया है। मनुष्य का मन सांसारिक हो गया है। दिव्यता की छाप प्रकट करने के स्थान पर वो मानवीय छाप प्रकट करता है। उसके कक्षों में सांसारिक चित्र दिखाई देते हैं। नूह के दिनों में जो पतनकारी आचरण प्रचलित थे, जिन्होंने उस युग के निवासियों को उद्धार की आशा से परे कर दिया था, वे आज दिखाई देते हैं। साइंस ऑफ द टाइम्स, 18 दिसंबर अपकिंजो 1।